सुजीत कुमार की आवाज में एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है और यह केसी श्रीवास्तव द्वारा रचित पुस्तक है, उसका रिकॉर्डिंग होने जा रहा है। इसके अंतर्गत पहला अध्याय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक की घटना। उत्तर भारत की राजनीतिक दशा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अति प्राचीन काल में हुआ, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार सुनिश्चित तिथि क्रम होता है और इस दृष्टि से भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हम ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य 650 ईस्वी पूर्व के पहले नहीं मान सकते। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया तथा इससे अस्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य यद्यपि उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे, तथापि इनमें से कोई भी देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रामाणिक विवरण यद्यपि हमें किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता, तथापि बौद्ध ग्रंथ अनुगंत निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपदों कहा गया है। इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा बजी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां बत्स, नौवां कुरु, दसवां पांचाल, ग्यारह मत्स्य, बारह शूरसेन, तेरह अशक, चौदह अवंती, पंद्रह गंधार, सोलह कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से दिए गए। पहला अंग, दूसरा बंग, तीसरा मगध, चौथा मलय, पांचवा मालव, छठा अच्छ, सातवां वत्स, आठवां कुछ, नौवां पाढ्य, दसवां लाढ़, ग्यारहवां बज्जी, बारहवां मोली यानी मल, तेरहवां काशी, चौदहवां कौशल, पंद्रहवां अवध, सोलहवां संभुत्तर। उपर्युक्त दोनों सूचियों की तुलना करने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि कुछ राज्यों के नाम जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी आदि दोनों में ही समान है। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का विचार है कि भगवती सूत्र की सूची में जिन राज्यों के नाम गिनाए गए हैं वे सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के सूचक हैं। उनका विस्तार यह सिद्ध करता है कि वे अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित राज्यों के बाद के हैं। अतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में भारत की राजनीतिक स्थिति के ज्ञान के लिए हमें बौद्ध ग्रंथ की सूची को भी प्रमाणिक मानना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है वे बुद्ध के पहले विद्यमान थे, क्योंकि बुद्ध काल में काशी का राज्य कौशल में तथा अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया था। संभवतः उस समय अशमक भी अवंती द्वारा जीत लिया गया था। इसी प्रकार वज्जी का उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि महाजनपद विदेह राजतंत्र के पतन के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ पूर्व ही अस्तित्व में आ गए होंगे। इस प्रकार हम 16 महाजनपदों को ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रथमार्ध में रख सकते हैं। अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ इनमें दो प्रकार के राज्य थे। पहला राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंजाल, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अशमक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य थे वज्जी अथवा मल्ल। इन महाजनपदों का विवरण इस प्रकार है। पहला, काशी। वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध कोशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि इस राज्य का विस्तार 300 लीग था और यह महान समृद्धशाली तथा साधन संपन्न राज्य था। काशी तथा कोशल के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किंतु अंततोगत वह कोशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा, कोशल। वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कोशल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पंजाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर अयोध्या तथा साकेत थे। रामायणकालीन कोशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कोशल राज्य के दो भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत था तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। तीसरा, अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। जिस प्रकार काशी तथा कोसल में प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टी को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग को जीत लिया था, किंतु बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। चौथा, मगध। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले में इसमें सम्मिलित थे। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे तथा दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह तथा गिरिव्रज थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। नगर के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। पांचवा, वज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के गात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बशाढ़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। कुंडग्राम वैशाली के समीप ही स्थित था। अन्य राज्यों के विषय में हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संभवतः अन्य राज्य 4 राज्य उग्र, भोग, इच्छवाकु तथा कौरव थे। जैन साहित्य में ज्ञातिकों के साथ इनका उल्लेख हुआ है तथा इन्हें एक ही संस्थागत का सदस्य कहा गया है। बुद्ध के समय में यह एक शक्तिशाली संघ था। छठा, मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ गण राज्य था, जिसमें पावा तथा कुशीनगर के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेह राज्य की ही भांति मल्ल राज्य भी प्रारंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था। कुश जातक में ओशां ओकांग को वहां का राजा बताया गया है। कालांतर में उनका एक संघ राज्य बन गया। बुद्ध के समय तक उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। सातवां, चेदी या चेती। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में
प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोतीथवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। आठवां, वत्स। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में वह बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उसके पिता परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कौशाम्बी में विस्तृत खुदाइयाँ की गई हैं, जिनसे पता चलता है कि ईस्वी पूर्व 12वीं सदी के मध्य से लेकर 6वीं सदी ईस्वी तक यहाँ बस्ती बसाई गई हुई थी। श्रेष्ठी घोसी द्वारा निर्मित विहार तथा उदयन के राजा प्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। 9वां, कुरु। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारतकालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। जातक ग्रंथों के अनुसार इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। कुरु देश के लोग प्राचीन समय से ही अपने बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। 10वां, पंचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फरुखाबाद के जिलों से लेकर मिलकर प्राचीन पंचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। पहला, उत्तरी पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र बरेली स्थित वर्तमान नगर थी, तथा दूसरा, दक्षिणी पंचाल, जिसकी राजधानी कंपिल्य फरुखाबाद स्थित कंपिल थी। कान्यकुब्ज का वर्षित प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। 6वीं शताब्दी से पूर्व कुरु तथा पंचाल का एक संघ राज्य था। 11वां, मत्स्य, मच्छ। राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनैतिक महत्व नहीं था। 12वां, शूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनाई तथा इसकी राजधानी को मिथोरा कहते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का सर्वप्रमुख शिष्य था। उसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार संभव हुआ। मज्झिम निकाय से पता चलता है कि अवंतीपुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रद्युत की कन्या से हुआ था। 13वां, अश्वक। अश्मक या अश्वक। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर अश्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकुवंशी शासकों ने किया था। चुल्लक लिंग जातक से पता चलता है कि अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग के राजा को जीता था। महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था, तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंतर्गत समाहित कर लिया। 14वां, अवंती। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दूसरा, दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का राजा प्रद्युत था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खाने थीं तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित कर लेते थे। इसी कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। यह बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र था, जहाँ कुछ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। 15वां, गंधार। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गंधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ही यहाँ पुक्साती अथवा पुष्कर शारी नामक राजा राज्य कर रहा था। उसने संबंध मगधराज बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूध मंडल भेजा था और इस प्रकार गंधार तथा मगध राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ। पुक्कुसाती ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा प्रद्योत को पराजित किया था। 16वां कंबोज। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफ्रिस्तान के भाग को मिलाकर प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद बना था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। कालांतर में यहाँ के राजतंत्र के स्थान पर संघ राज स्थापित हो गया। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। इस प्रकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत विकेंद्रीकरण एवं विभाजन के दृश्य उपस्थित कर रहा था। जिन 16 महाजनपदों के नाम ऊपर गिनाए गए हैं उनमें पारस्परिक संघर्ष विद्वेष एवं घृणा का वातावरण व्याप्त था। प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। काशी और कौशल के राज्य एक दूसरे के शत्रु थे। प्रारंभ में काशी विजयी रहा परंतु अंत तो गत्वा वह कौशल की विस्तारवादी नीति का शिकार बना। इसी प्रकार अंग मगध तथा अवंती और अशमक भी परस्पर संघर्ष में उलझे हुए थे। गणराज्यों का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असह्य हो रहा था। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करने पर तुला हुआ था। अन्य महाजनपदों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं रही होगी। इस विस्तारवादी नीति का परिणाम अच्छा निकला। निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में मिला लिए गए जिसके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। 4 शक्तिशाली राजतंत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक आते आते हमें उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राज्यों का प्रभुत्व दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 16 महाजनपदों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्वता एवं संघर्ष के फलस्वरूप अनेक छोटे जनपदों को बड़े राज्यों में विलय हो गया और इस प्रकार केवल 4 बड़े राजतंत्र ही प्रमुख रहे। अन्य महाजनपदों या तो इनकी विस्तारवादी नीति के शिकार हुए अथवा वे अत्यंत महत्वहीन हो गए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में इन्हीं 4 राजतंत्रों का उत्तर भारत की राजनीति में बोलबाला था। ये राज्य हैं कौशल, वत्स, अवंती और मगध। हम यहाँ प्रत्येक के विषय में कुछ विस्तार से विवरण देंगे। कौशल। कौशल उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख राज्य था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक राजा ने काशी राज्य को जीता था। जातक ग्रंथों में कंस को बरण सिंघों अर्थात बनारस पर अधिकार करने वाला कहा गया है। कंस का पुत्र तथा उत्तराधिकारी महाकौशल हुआ। उसके समय में कौशल का काशी पर पूर्ण अधिकार हो गया। काशी के मिल जाने से कौशल का प्रभुत्व अत्यधिक बढ़ गया। काशी व्यापार तथा वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और तक्षशिला सौवीर तथा अन्य दूरवर्ती स्थानों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। इस राज्य के मिल जाने से कौशल की राजनैतिक तथा आर्थिक समृद्धि बढ़ गई। पूर्व में उसका प्रतिद्वंदी राज्य मगध था। कौशल तथा मगध के बीच वैमनस्य का मुख्य कारण काशी का राज्य था जिसकी सीमाएं दोनों ही राज्यों को स्पर्श करती थी। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसन्नजीत था। वह महाकौशल का पुत्र था। उसने मगध को संतुष्ट करने के लिए अपनी बहन महाकौशला अथवा कौशला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ कर दिया तथा दहेज में काशी अथवा उसके कुछ ग्राम दिए। अतः बिंबिसार के समय तक इन दोनों राज्यों में मैत्री संबंध कायम रहा। परंतु बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के समय में कौशल और मगध में पुनः संघर्ष छिड़ा। संयुक्त निकाय में प्रसन्नजीत अथवा अजातशत्रु के संघर्ष का विवरण मिलता है। ज्ञात होता है कि प्रथम युद्ध में अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत को परास्त किया तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। कालांतर में प्रसन्नजीत ने मगध से संधि कर लेना ही श्रेयस्कर समझा और उसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। काशी के ग्राम जो प्रसन्नजीत ने बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात वापस ले लिए थे पुनः अजातशत्रु को सौंप दिए। प्रसन्नजीत के समय में कौशल का राज्य अपने उत्कर्ष पर था। काशी के अतिरिक्त उसका कपिलवस्तु के, शाक्य केशपुत्र के कलम, पावा और कुशीनारा के मल्ल, रामगाम के कोलिये, पिपलिवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के अनुसार वह 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध एवं उनके मत के प्रति श्रद्धालु था। बुद्ध उसकी राजधानी में प्रायः जाते तथा विश्राम करते थे। प्रसेनजीत का पुत्र तथा उत्तराधिकारी विदर्भ हुआ। संयुक्त निकाय से पता चलता है कि प्रसेनजीत के मंत्री दीक्षारण ने विदर्भ के साथ मिलकर कौशल नरेश के विरुद्ध षड्यंत्र किया। विदर्भ ने अपने पिता की अनुपस्थिति में राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत ने भागकर मगध राज्यों में शरण ली, किंतु राजगृह नगर के समीप पहुंचने पर थकान से उसकी मृत्यु हो गई। विदर्भ ने कपिल वस्तु के शाक्यों पर आक्रमण किया। संघर्ष का कारण बौद्ध साहित्य में यह बताया गया है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के कुल में संबंध स्थापित करने को काफी उत्सुक था। इस उद्देश्य उसने शाक्यों से यह मांग की कि वे अपने वंश की एक कन्या का विवाह उसके साथ कर दे। शाक्यों को यह प्रस्ताव अपने वंश की मर्यादा के प्रतिकूल लगा, किंतु वे कौशल नरेश को रुष्ट भी नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने छल से वास भक्तिया नामक एक दासी की पुत्री को प्रसेनजीत के पास राजकुमारी बनाकर भेज दिया। प्रसेनजीत ने उससे विवाह कर लिया। विदर्भ उसी का पुत्र था। जब उसे इस छल का पता चला तब वह बड़ा कुपित हुआ तथा शाक्यों से बदला लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि एक बार वह स्वयं शाक्य राज्य में गया था तो शाक्यों ने दासी पुत्र कहकर उसका अपमान किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए राजा बनते ही उसने शाक्यों पर आक्रमण कर दिया। वे पराजित हुए तथा नगर के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को भीषण संहार किया गया। उनमें से अनेक ने भागकर अपनी जान बचाई, किंतु विदर्भ को अपने दुष्कृत्यों का फल तुरंत मिला। शाक्यों के संहार के बाद जब वह अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौट रहा था तो अचिरावती राप्ती नदी की बाढ़ में अपनी पूरी सेना के साथ नष्ट हो गया। रिज डेविड्स ने इस कथा की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है। यह घटना महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के लिए कुछ पहले की है। विदर्भ के उत्तराधिकारी के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। लगता है कि उसके साथ ही कौशल का स्वतंत्र अस्तित्व भी समाप्त हो गया तथा मगध से मिला लिया गया। वत्स। इलाहाबाद तथा बांद्रा जनपदों की भूमि पर स्थित वत्स भी गौतम बुद्ध के समय का एक प्रमुख राजतंत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। इस समय यहाँ पौरव वंशी राजा उदयन राज्य कर रहा था। विनय पिटक में उसके पिता का नाम परंतप तथा पुत्र का नाम बोधि कुमार मिलता है। वत्स का पड़ोसी राज्य अवंती था। दोनों ही साम्राज्यवादी थे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष छिड़ना अवश्यंभावी था। एक बार हाथियों का शिकार करते हुए उदयन को अवंती राज प्रद्योत के सैनिकों ने बंदी बना लिया। कारागार में उसका प्रद्योत की कन्या वासवद्धता से प्रेम हो गया तथा वह वासवद्धता का उदा अपहरण कर अपनी राजधानी कौशाम्बी वापस लौट आया। बाद में प्रद्योत ने दोनों के विवाह की अनुमति दे दी। इस प्रकार वत्स और अवंती के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो गया। सोमदेव के कथा सरिता सागर तथा सिरहर्ष की प्रियदर्शिका से पता चलता है कि उदयन ने कलिंग को जीता तथा अपने ससुर दृढ़ वर्मन को अंग की गद्दी पर आसीन किया था। परंतु इन विवरणों की सत्यपरता संदेहास्पद है। यद्यपि उदयन के साम्राज्य विस्तार का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य गंगा यमुना के दक्षिण पश्चिम में अवंती का सीमा तक विस्तृत रहा होगा। सुमार गिरी के भग गणराज्य के लोग उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। जातक ग्रंथों के अनुसार भग राज्य में उसका पुत्र बोधि निवास करता था। भास के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती के साथ हुआ था। इससे उदयन मगध का भी मित्र बन गया था तथा अब वह मगध के विरुद्ध अवंती की सहायता नहीं कर सकता था। उदयन प्रारंभ में बौद्ध मतानुयायी नहीं था, किंतु बाद में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उसे बौद्ध मत में दीक्षित किया। कौशाम्बी में इस समय कई मठ थे जिनमें घोषित राम सर्व प्रमुख था। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। बुद्ध स्वयं इन मठों से में जाते थे तथा विश्राम करते थे। बौद्ध धर्म का केंद्र होने के साथ साथ कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी की खुदाइयों से उदयन के राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं, जिससे उसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि हो जाती है। उदयन के बाद वत्स राज्य का इतिहास अंधकारपूर्ण है। लगता है इसके साथ ही इसकी स्वतंत्रता का विलोप हो गया तथा यह राज्य अवंती के अधीन चला गया। अवंती, यह पश्चिमी भारत का प्रमुख राजतंत्र था। गौतम बुद्ध के समय में यहाँ का राजा प्रद्योत था। वह पुलिक का पुत्र था। विष्णु पुराण से पता चलता है कि पुलिक बाढ़द्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय का अमत्य था। उसने अपने स्वामी को हटाकर अपने पुत्र को राजा बनाया। इसके इस कार्य को अनुमोदन समस्त क्षत्रियों ने बिना किसी विरोध के किया और प्रद्योत को राजा स्वीकार कर लिया। उसकी कठोर सैनिक नीतियों के कारण महावग्ग जातक में उसे चंड प्रद्योत कहा गया है। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके समय में संपूर्ण मालवा तथा पूर्व एवं दक्षिण के कुछ प्रदेश अवंती राज्य के अधीन हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से भी यह राज्य अत्यंत समृद्ध था। यहाँ का लौह उद्योग विकसित अथवा अवस्था में था। अतः यह अनुमान करना स्वाभाविक ही है कि प्रद्योत के पास उत्तम कोटि के लोहे के अस्त्र शस्त्र रहे होंगे, जिनके बल पर उसने मगध की साम्राज्यवादी नीति का एक दीर्घकाल तक प्रतिरोध किया। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। ज्ञात होता है कि एक बार जब प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था, किंतु अजात शत्रु के समय में दोनों राज्यों का मैत्री संबंध जाता रहा। मध्यम निकाय से पता चलता है कि प्रद्योत के आक्रमण के भय से मगध नरेश अजात शत्रु अपनी राजधानी का दुर्गीकरण करवा रहा था, किंतु दोनों राजाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हो पाया। पुराणों में कहा गया है कि वह पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन रखेगा तथा अच्छी नीति का नहीं होगा। वह नरोत्तम 23 वर्षों तक राज्य करेगा। प्रद्योत बाद में अपने बुद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से बौद्ध बन गया। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। वहाँ अनेक प्रसिद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ निवास करते थे। प्रद्योत के बाद उसका पुत्र पालक अवंती का राजा हुआ। परिशिष्टा पर्वन से पता चलता है कि पालक ने वत्स राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः उसने अपने पुत्र विशाखयूप को कौशाम्बी का उपराजा बनाया था। पालक ने 24 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद विशाखयूप, अजक तथा नंदीवर्धन बारी बारी से राजा हुए, जिन्होंने क्रमशः 50, 21 तथा 20 वर्षों तक राज्य किया। इन सब का अंत शिशुनाग ने किया। मगध, बुद्धकालीन राजतंत्रों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। आगे चलकर सभी राज्य इसी में मिला लिए गए और एक प्रकार से मगध का इतिहास पूरे भारत का इतिहास बना। ऐतिहासिक काल के मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। वह महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। बिंबिसार एक महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार वृद्धावस्था में अपने पुत्र अजात शत्रु द्वारा मारा गया। अजात शत्रु भी घोर साम्राज्यवादी था। उसने वज्जी संघ को परास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया। इसके पश्चात उसने मल्लों के संघ की भी विजय की। उसके समय में मगध राज्य का अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। बुद्धकालीन भारत के गणराज्य प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। सर्वप्रथम 1903 में रिज डेविडिस ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी। प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों को गणतंत्र से भिन्न बताया गया है। अवधान शतक से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए, जहाँ के लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूछा। उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन हैं तथा कुछ राजाओं के। आचार्य गंगाशूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देता है कि उसे उस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहाँ गणतंत्र का शासन हो। संघ गण का पर्यायवाची था। पाणिनि ने संघ को राजतंत्र से स्पष्टतः भिन्न बताया है। क्षत्रियादेक राजाद संघ प्रतिषेधार्थकम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, वार्ता शास्त्रोपजीवी तथा राज शब्दोपजीवी। प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सुराष्ट्र आदि तथा दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, वृज्जी, मल्ल, मद्र, कुकुर, पंचाल आदि की गणना की गई है। अस्पष्टता यहाँ राज शब्द उपजीवी संघ से तात्पर्य उन राज्यों से है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। महाभारत में भी प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इससे सूचित होता है कि सिकंदर का आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे, जो कि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मिलता है। मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। मालव, योधे, अर्जुनायन आदि अनेक गणराज्यों के सिक्के राजा का उल्लेख न कर गण का ही उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे तथा वे राजतंत्रों से इस अर्थ में गणतंत्र नहीं हो जा सकते हैं। उन्हें हम आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कह सकते हैं, जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के सम्मुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। उदाहरण के लिए यदि हम वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का नाम लेते हैं तो हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वहाँ के शासन में वैशाली नगर की संपूर्ण जनता भाग लेती थी, बल्कि तथ्य यह है कि केवल लिच्छवी कुल के ही प्रमुख व्यक्ति मिलकर शासन चलाते थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार है। पहला, कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य केवल नेपाल की तराई में स्थित था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरवाह नामक स्थान से करते हैं, जहां से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातु गर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसे शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अनेक नगर थे, चातुमा, सामगाम, खोमदुस, शिलावती, नगरत, देवदह, शक्कर आदि। बुद्ध की माता देवदह की ही कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व काफी बढ़ गया, किंतु राजनीतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य का कोई महत्व नहीं था और यह कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विड्ढूब द्वारा किया गया। दूसरा, सुमसुमार पर्वत के भाग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। ऐसा लगता है कि भग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे। भग गणराज्य के अधिकार क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदियों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। भग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। ज्ञात होता है कि सुमसुमार पर्वत पर वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। तीसरा, अलकप के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहबाद और आरा और मुजफ्फर जिलों के बीच स्थित था। बुलियों का वेट द्वीप बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था, यही संभवतः उनकी राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया तथा उस पर स्तूप का निर्माण करवाया था। चौथा, केशपुत्र के कालाम। केशपुत का निश्चित रूप से समीकरण स्थापित करना कर सकना कठिन है। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुन्नड़वार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कलामों का संबंध पंजाल जनपद के केशियों के साथ था। इस गणराज्य के आलार कलाम नामक आचार्य से, जो उरुवेला के समीप रहते थे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। कालाम लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। पांचवा, रामगाम के कोल्लिये। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था। शाक्य और कोल्लिये राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इसी नदी के जल पर निर्भर करते थे। नदी के जल के लिए उनमें प्राय संघर्ष भी हो जाता था। एक बार गौतम बुद्ध ने ही इसी प्रकार के एक संघर्ष को शांत किया था। कोल्लिये गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोल्लियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। छठा, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। सातवां पावा के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। आठवां पिपलिवन के मौर्य। मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। महावंश टीका से पता चलता है कि कौशल नरेश विदुर के अत्याचारों से बचने के लिए हुए हिमालय प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मोरों की कूक से गुंजायमान स्थान में पिपलिवन नामक नगर बसा लिया। मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहे गए। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। पिपलिवन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसमही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। नौवां वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। उनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बशर्थ नामक स्थान में स्थित थी। महावग जातक में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन चैत्य तथा विहार थे। एक पर्ण जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर से तीन दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से एक योजन दूर थी और उसमें पहरे की मीनारों वाले तीर द्वार बनाए हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कठागार शाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी हुआ करते थे। उनकी शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में यह राज्य अपनी समृद्धि की प्रकाष्ठा पर था। यहाँ का राजा चेटक था। उसकी कन्या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजात शत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। दसवां मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, परंतु बुद्ध के समय में यह संघ राज्य बन गया। विदेह लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थी, जहां श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। गणराज्यों का विधान तथा शासन पद्धति। गणराज्यों के विधान तथा शासन पद्धति के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है। इतना तो स्पष्ट ही है कि लिच्छवी आदि बड़े गणराज्यों की शासन व्यवस्था मौर्य कुलीय आदि छोटे राज्यों की अपेक्षा भिन्न नहीं रही होगी। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ राजा गणराज्य में आंतरिक शांति एवं सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भंडागारी आदि प्रमुख थे, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एवं केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पर्ण जाति के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। इसी प्रकार एक स्थान पर शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है। यह संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे, जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडागारी आदि पदाधिकारी होते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता था, जो अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के संबंध में कोलियों तथा शाक्यों के कृषकों के बीच विवाद हुआ, तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को सूचित किया तथा अधिकारियों ने अपने राजाओं को बताया। राजाओं ने इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात युद्ध का निर्णय लिया। इस प्रकार कौशल नरेश विडभ द्वारा शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उनकी राजधानी का घेरा डालकर उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर शाक्यों ने अपने संस्थागार में आत्मसमर्पण अथवा युद्ध करने के ऊपर विचार विमर्श किया। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। लिच्छवी गणराज्य में सेनापति के चुनाव का भी एक विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार सेनापति खंड की मृत्यु के बाद सेनापति सिंह की नियुक्ति संस्थागार के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के आधार पर की गई थी। कुशीनारा के मलों ने बुद्ध गणराज्यों का शासन जनतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। यदि यह मान लिया जाए कि बौद्ध संघ की कार्य पद्धति गणराज्यों की कार्य पद्धति पर आधारित थी तो हम गणराज्यों की कार्य प्रणाली के विषय में कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद के ही समान थी। प्रत्येक सदस्य के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस कार्य के लिए आसन पन्नापक नामक पदाधिकारी होता था। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित नियम होते थे। संस्थागार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था तथा विरोध होने पर स्वीकार कर लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। गुप्त मत प्रणाली की प्रथा थी। अनुपस्थित सदस्य के मत लेने के भी नियम बने हुए थे। मतदान अधिकारी को शला का ग्राहक कहा जाता था। प्रत्येक सदस्य को अनेक रंगों की शलाकाएं दी जाती थीं। इस प्रकार के मत के लिए विशेष रंग की शलाका होती थी जो शलाका ग्राहक के पास पहुंचती थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है। विवादग्रस्त विषय समितियों के पास भेजे जाते थे। संस्थागार के कार्यों के संचालन के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। गणों की कार्यपालिका का अध्यक्ष ही संभवतः संस्थागार का भी प्रधान होता था। सामान्यतः गणराज्यों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा ही की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्रिपरिषद भी होती थी। पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा ही की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्रिपरिषद भी होती थी जिसमें 4 से लेकर 20 तक सदस्य होते थे। ये केंद्रीय समिति द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। गणाध्यक्ष ही मंत्रिपरिषद का प्रधान होता था। केंद्रीय समितियां न्याय का भी कार्य करती थी। वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के विषय में बुद्ध घोष की टीका सुमंगलम विलासिनी से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती थीं। इसमें हमें ज्ञात होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता है जब वह एक एक करके 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था। इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार थे। पहला विनिश्चय महामत्त, दूसरा वोवाहारिक, तीसरा सूत्राधार, चौथा अर्थकुलक, पांचवा भंडागारिक, छठा सेनापति, सातवां उपराजा और 8वां राजा। राजा का न्यायालय अंतिम होता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे किंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकते थे। वे उसे उच्चतर न्यायालय में भेज देते थे। राजा दंड देते समय पवेनी पोट्ठक अर्थात पूर्व दृष्टांतों का अनुसरण करता था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि लिच्छवी गणराज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतया सुरक्षित रखा गया। यह एक नागरिक की स्वतंत्रता के जनतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करता है जो विश्व इतिहास में शायद अद्वितीय है। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थी जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास का ध्यान रखती थी। गणराज्यों के विधान तथा शासन के विषय में जो हमें थोड़ी बहुत सी सूचना मिलती है उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि ये राज्य बड़े समृद्ध तथा सुव्यवस्थित रहे होंगे। स्वयं महात्मा बुद्ध वज्र संघ की सुव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र से पता चलता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से वज्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब तक वे बार बार अपने संस्थागार में बैठक करते रहेंगे, मिलकर सहमति से रहेंगे, निर्णय लेंगे, प्राचीन परंपराओं का पालन करेंगे, अपने बड़े बूढ़े का सम्मान करेंगे तथा अपने आदर्श का पालन करेंगे, तब तक उनकी प्रगति ही होती रहेगी। वस्तुतः वज्र संघ की शक्ति उसके संगठन में ही निहित थी। जब तक यह संघ संगठित रहा, अजाशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा भी उससे भयभीत थे, किंतु जब उसमें फूट पड़ गई तब उसका पतन हो गया। गणराज्यों के विनाश के कारण जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बुद्ध काल के कुछ गणराज्य अत्यंत शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने समकालीन राजतंत्रों का बड़ा प्रतिरोध किया था। देशभक्ति तथा स्वाधीनता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, किंतु वे राजतंत्रों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके तथा अंततो गतवा उनका पतन हुआ। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी बताए गए हैं। काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्यों की स्वाधीनता का अंत कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनका विलोप हो गया, किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं है। हमें ज्ञात है कि समुद्रगुप्त कालीन गणराज्य नाम मात्र के लिए उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे तथा उन्हें पर्याप्त आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई थी। गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था उसके शासन में उच्च पदों तथा अनुवांशिक होना। चूंकि प्राचीन ग्रंथों में सर्वत्र राजतंत्र की ही प्रशंसा की गई थी तथा राजा का पद दैवी माना गया था, अतः गणराज्यों ने भी सुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना लाभकर समझा। गणराज्यों के शासक राजतंत्रों के अनुकरण कर महाराजा तथा महासेनापति जैसी उपाधियां ग्रहण करने लगे। ये पद वंशानुगत रूप से चलने लगे। कुमार देवी के उदाहरण से स्पष्ट है कि वह लिच्छवी गणराज्य की अनुवांशिक रूप से उत्तराधिकारिणी थी। क्रमशः गणराज्यों में सत्ता सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। अब राजतंत्रों से उनका कोई विवाद नहीं रह गया। इस प्रकार उनके शासन का जनतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। गणराज्यों की आपसी फूट तथा समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति को भी न्यूनाधिक रूप से उनके पतन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। समाप्त।